ஓம் கே தம் ஜெயினா அஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. வஞ்சா கல்பதருமயஸ்ய கிருபாசிந்துஹைவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. நமோ மகாபதன்னாய கிருஷ்ணப்ரேமப்ரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணசைதன்யநாம்னே கௌரத்திசே நமஹ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரியே. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணபக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமஹ. பக்த்யா விஹீனாய பராதலக்ஷ்யை க்ஷிப்தஸ்ய காமாதி தரங்க மத்யை க்ருபாமயீ த்வாம் சரணம் ப்ரபன்னா வ்ருந்தே நுமஸ்தே சரணாரவிந்த. யம் ப்ரவ்ரஜந்தமனுபேதமபேதக்ருத்யம் த்வைபாயனோ விரஹ காத்ரயா ஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா ஸர்வோபிநேதோ தம் ஸர்வபூதஹ்ருதயம் முனிமானதோஸ்மி. தவைவாஸ்மி தவைவாஸ்மி ந ஜீவாமி த்வயா வினா இதி விஜ்ஞாய ராதே தம் நயமாம சரணந்தி. மே ஆராத் பரமாராத்தம் நித்தலீலா பிரவிஷ்டோ விஷ்ணுபாத் ஸ்ரீஸ்மத்பக்தி பிரஜான் கேசவ கோஸ்வாமி மகாராஜி கே சரணோ மே அப்படி ஆந்திரிக் ஸ்ரத்தா புஷ்பாஞ்சலி ஜாபன் கர்த்தா ஹூ. தத்பாத் இஸ்கோன் கி கோ சன்ஸ்தாபக விஸ்வமே சர்வத்ர சுத்தா பக்தி கா பிரச்சாரக கீதா கே ஒரு பாகவத் கே பிரச்சாரக அப்படி சிக்ஷா குரு ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமி மகாராஜி கே சரணோ மே நத்மஸ்தக ஹோதா ஹூ. யே லோக ஹமாரே ஊபர் மே கிருபா கரே. ஹம்னே பர்சோ ஸ்ரீமத் பாகவத் மே பிரஹலாத் ஜி கே சரித்திர சே கேவல் ஏக ஸ்லோக கி வியாக்யா ஆரம்ப ஹம்னே கி. ஹம்னே ஜோ குச் கஹா வோ ஹம் லோகோ கே சைத்தன்ய மஹாபிரபு ஜி கே விசார் சே சனாதன் கோஸ்வாமி ஔர் விஸ்வநாத் சௌகத்ரி தாக்கூர் ஜி நே அப்னி டீகா வைஷ்ணவ தோஷினி ஔர் சாரார்த்த தர்ஷினி மே ஜோ கியா ஹை ஔர் ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஜி நே அப்படி இஸ் கிரந்த மே ஜோ கியா ஹை சபோ லேகர் கே மேனே கஹா தா. உஸ் தின் மேனே கஹா தா சங்க்ஷேப் மே யஹி பாப் ஔர் பேட்டே மே குச் அன்பன் ஹுயி. பாப் கஹதா ஹை பகவான் ஹமாரா விரோதி ஹை, விஷ்ணு ஹமாரா விரோதி ஹை, உஸ்னே ஹமாரே பாயி கா வத் கியா, தும் உஸ்கா நாம் மத் லோ. ஔர் பேட்டா கஹதா ஹை ஜோ வோ கிஸி கா விரோதி நஹி, வோ சம்தர்ஷி ஹை, பரம் தயாலு ஹை. தேர் வாஸ் எ குவாரல் அமாங் சன் அண்ட் ஃபாதர். ஃபாதர் டோல் தட் ஐ நோ விஷ்ணு பட் நவ் ஹீ இஸ் எனிமி,
he has killed my brother. And son told that he is Samdarshi, he is so merciful, he cannot have any dvesh to anyone. अंत में हिरण्यकश्यपु मारा गया, मारने पर भी भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। मुक्ति माने कौन सी मुक्ति दी? फिर से जय विजय के रूप में उसको अपना लिया। ये भगवान की करुणा है। इसलिए भगवान सब समय सब प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जगत के ऊपर में करुणा करते हैं। इसी के लिए नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं, प्रहलाद जी का और हिरण्यकश्यपु का, भगवान कितने दयालु हैं। उनके मारने के पीछे भी उनकी करुणा छिपी हुई है। इसलिए प्रहलाद नारद जी कहते हैं, देखो किसी प्रकार से कृष्ण में चित्त को लगाओ, किसी भी प्रकार से, जैन केन उपायेन कृष्णे मनोनिवेशय, जैन केन उपायेन, अरे शत्रु भाव से भी हो, द्वेष भाव से भी हो, काम भी हो, जो जगत में कोई काम से बचा नहीं वो काम भी भगवान में लगाओ, भक्ति लगाओ, यदि संबंध रखना है तो भगवान से संबंध रखो। कोई भी, ये भगवान कौन है, कौन है भगवान? ये उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, सर्वत्र किसको भगवान कहा गया? इसके लिए पहले एक बार झगड़ा हो गया देवताओं में, ऋषियों में। कोई कहता है ये ब्रह्मा है भगवान, कोई कहता है ये विष्णु, और कोई कहता है शंकर जी। कोई कहते हैं शंकर जी भगवान है, कोई कहते हैं विष्णु भगवान है, कोई कहते हैं ब्रह्मा भगवान है। यह भाग दिया गया एक ऋषि के ऊपर में जो निरपेक्ष था, तटस्थ था, वो ऋषि भृगु जी गए, ब्रह्मा जी को केवल प्रणाम नहीं किया और आसन पर बैठ गए। जय हो राधा रास बिहारी जी की, गौर नित्यानंद प्रभु की, राजा रामचंद्र जी की। अभिसंपाद देने के लिए गए, वहां से भृगु जी उठ करके चले आए और शंकर जी के पास में। शंकर जी दौड़े, मेरे गुरु भाई हैं कि बड़े भ्राता है, और हाथ लगाया ऐसे ये हम उनको प्रणाम करें, गले से मिल जाए। भृगु जी ने आज दूर रहो, असभ्य, स्नान नहीं करता, हड्डियों की माला पहनता है, भस्म राख लगा करके रहता है मरुभूमि की, सब समय अपवित्र बास करता है, यहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां पर दूर रहो, मत छुओ। जन का ये तो बड़ा, देखो तो कैसा ये बदल गया, बत्रिशूल उठाया मारने के लिए भगे वहां से चले गए। विष्णु के हाथ, विष्णु वहां पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी पैर पलोट रही हैं, और इधर न देखा न उधर, एक लात मारा जोर करके यहां पर। भगवान झट उठे, हाँ मुझसे गलती हो गई, प्रभु आप विराजमान हुई, आपने मारा, वज्र जैसा मेरा हृदय, और आपने कोमल जैसे, आपके चरण कोमल कमल जैसे भी, और आप मारे, आपको चोट लगी होगी, लेकिन उनका पैर संभालने लगे। बोले प्रभु हमको क्षमा कीजिए, ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं कि अब आप आ गए, आपका भी वंदन नहीं किया, बस प्रभु उनके चरणों में लुट गए। बोले जी आप ही भगवान हैं। विष्णु को कहा जी यही सर्वाराध्य है, ये विष्णु कौन है? विष्णु गर्भधरसाई का एक छोटा सा पार्ट है जो जीवों के हृदय में निवास करता है साक्षी के रूप में, उसी को परमात्मा कहते हैं। एक गर्भधरसाई के कोटि कोटि यह विष्णु है, और ये गर्भधरसाई के कौन है? कर्णा देसाई विष्णु के लाखों कोटि प्रकाशों में से एक हैं। ये कारण आप देखिए, अखिल विश्व ब्रह्मांड के ये कारण हैं। उनके अंश के अंश के अंश हैं ये विष्णु, वो ब्रह्मा विष्णु में से श्रेष्ठ हैं। और ये कर्णाधिशायी कौन है? ये हैं वैकुंठ जगत में रहने वाले जो महासंकर्षण हैं, उनके अंश हैं। और महासंकर्षण कौन है? द्वारका में रहने वाले जो मूल संकर्षण हैं, उनके अंश। और ये कौन है? ये बलदेव जी जो ब्रज में रहते हैं, उनके अंश हैं। और बलदेव जी कौन है? कृष्ण के प्रकाश हैं। ये ब्रजनंदन श्याम सुंदर राधा कांत रास बिहारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, यही मूल है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब विष्णु ही ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवों में दुर्गा इत्यादि, काली गणेश शंकर इत्यादि में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण के अंश बलदेव जी, बलदेव जी के मां शंकरसन, उनके कर्णाब्दिशाही उनके अंश हुए, गर्भोदशाही उनके अंश, क्षीरोदशाही अक्षीरोदशाही इतने प्रकट हैं। वही जबकि इतना अंश के अंश के अंश के कला के कला के विकला के कला के सुकला के कहां ये विष्णु, और वही श्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण की बात क्या है? इसलिए कृष्ण ही सर्वाराध्य हैं, इस चीज को समझो। यदि उसकी तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, उनकी यदि प्रसन्नता हो जाएगी सभी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके भी बहुत से उदाहरण हैं। आज नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी से यही प्रसंग ले रहे हैं, जिस किसी उपाय से हो कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तरेश्वरे मन आवेश्य तदहंग हित्वा भवस्तद गतिम गता। किसी प्रकार से कृष्ण में चित्त निवेश करो, चाहे काम से हो, चाहे द्वेष से हो, भय से, स्नेह से, भक्ति से, किसी प्रकार से चित्त निवेश करना है। अब इसी के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और हमारे आचार्य ने श्लोक की व्याख्या में जो कुछ कहा है, मैंने उस दिन कहा था परसों, थोड़ा सा प्रभुपाद जी का, भक्ति वेदांत स्वामी जी का कुछ थोड़ा सा रह गया था, उसमें थोड़ा सा बतला करके आगे के श्लोक में चलूंगा। इन्होंने एक श्लोक लिया है इस श्लोक की व्याख्या में, उस दिन भी मैंने आरंभ किया था, पूरा आरंभ नहीं किया था। विक्रीडितम ब्रजवधुहि दंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रणीया तत वर्णयेदज भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाशु अपिहनत अचरेण धीर। विक्रीडितम बधुभेदन ये ले रहे हैं महाप्रभु जी, आप तो इधर दीजिए ध्यान, आप इधर ध्यान दें, उनको होने दो। यहां पर जो पहला जो है ना कामात देशात, कामात का उदाहरण हमारे स्वामी जी दे रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, कैसे काम के द्वारा चित्त कैसे निविष्ट हो जाता है। काम प्राणियों में सब में सहज है, एक वृत्ति है, जैसे क्रोध वृत्ति है ना, ऐसा कोई नहीं है जिसमें क्रोध ना हो, सब में क्रोध है। जिन लोगों ने क्रोध को जीत लिया है भक्ति के बल पर, उनकी बात छोड़िए, नहीं तो साधारण रूप में सभी के अंदर में क्रोध होता है। गीता इत्यादि में इस क्रोध से बचने का और क्रोध को दमन करने का उपदेश दिया गया है। वायु को भी वशीभूत कर लिया जाएगा संभव है, किंतु मन को नहीं। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं, जैसे मन की वृत्ति स्वाभाविक है, वैसे काम भी सब में है। जहां थोड़ा सा कोई उद्दीपन का होता है, सुंदर चीज देखा कामना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहते हैं वो काम को भी भगवान में लगाओ। कैसे लगाओ? जैसे गोपियों ने लगाया था, गोप्य कामात, काम गोपियों ने लगाया। कैसे? विक्रीतम, कृष्ण के साथ में उन्होंने खेल किया। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, यह स्वामी जी के व्याख्या के ऊपर में ही मैं देता हूं। गोपियों को कृष्ण के प्रति चित्त को कैसे लगाया? कृष्ण गोचारण में जा रहे हैं, कोटि कोटि गायें, धावली, श्यामली, कावली, कालिंदी, गंगे, पिशंगे सब जा रहे हैं। विशेष करके दो धाराएं हैं, जन्म मानो गंगा और जमुना। जो सादी गायें हैं, सफेद गायें हैं, वो गंगा, और जो काली गायें हैं वो मानो जमुना। दोनों धाराएं चल रही हैं, असंख्य अनंत गायें, बच्चे सब हाथ में वेणु, फूलों की माला यहां पर गले में, और कृष्ण की जय जयकार करते हुए साधु 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 चल रहे हैं। उस समय एक गोपी कह रही है, अक्षमतां फलमिदं न परम विदामः, सख्या पशूनम विवेश यथोर्वयस्यी वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टम जैवानि पीतम अनुरक्त कटाक्षमोक्षम। ये श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय का ये छठा श्लोक करीब होगा। ये शुद्ध भूमिका की है, श्लोक तो सिद्ध भूमिका की, किंतु हम लोग इस कथा का स्मरण कर सकते हैं। काम के लिए उपमा दे रहा हूं कि काम से कैसे चित्त को लगाया जाता है। कृष्ण बड़े सुंदर हैं। कैसे सुंदर है? इसके पहले श्लोक में बतलाया गया कि कृष्ण कैसे सुंदर है। बरहा पीड़म नटु वर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंती चमालाम अरंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कृष्ण जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? होठों पर मुरली विराजित है, थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, गले में वैजयंती माला, पंच फूलों की माला लटक रही है आपाद मस्तक, यहां से लेकर के पैरों तक मत गजराज की भांति चल रहे हैं हिलते हुए, है ना? आंखों से कटाक्ष निकल रहा, पीताम्बर मानो बिजली चमक रही है उनके मेघ श्यामल कोमल अंगों के ऊपर। सखा लोग चारों तरफ से कृति करते हुए, उनका जय जयकार करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कभी आलिंगन कर लेते हैं, और सुंदर सुंदर कोमल चरणों से जिस पर की 19 प्रकार के चिन्ह हैं वो चल रहे हैं, पृथ्वी मानो पुलकित हो रही हो। गोपियों ने कहा, एक किसी सखी ने दूसरे को कहा, अखंडवतांग फलमिदम न परम विदामः। प्यारी सखियों, आंखों का फल हम क्या है मैं नहीं जानती हूं, दूसरा बस एक ही जानती हैं, इन आंखों का फल क्या है? इधर देखना, उधर देखना, सिनेमा देखना, घर में बैठ करके टीवी कैंसर देखना, कैंसर ही है जरूर, लोगों की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। जितने आजकल उत्पात हो रहे हैं वो सबका वही कारण है। इसलिए कहते हैं आंखों का फल दूसरा कोई मैं हम नहीं जानती हैं जो क्या है, एक ही फल है दूसरा नहीं, क्या है? न परम विदाम। सख्य पशुन अनिव्यवेश यथोर वयस्यी, कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बहुत से सखा हैं, लाखों लाखों, सिदाम, सुदाम, वसुदाम, तोक, लवंग, सुबल इत्यादि बहुत, उन सखाओं के साथ में जा रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। और कैसे जाते हैं? असंख्य गायें कोई इधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई उधर जा रही। कृष्ण ने कह दिया तीरी तीरी, सब गायें एकदम जमुना के किनारे में खड़ी हो गई, नीरी नीरी, बस एकदम पानी पीने के लिए उतर गई। और फिर कह दिया तीरी तीरी, पानी पी करके निकल आई। यदि पानी पिलाना है तो क्या कहते हैं, चू 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 चू, बस सब चू 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 करके पानी पीने लग गई। इशारे पर सब काम हो रहा है। और यदि नहीं कोई गाय सुनती ना, बंसी पर धवली श्यामली कह दिया, बस वो कृष्ण के किनारे चली आई, समझ में स्नेह से आ गई। कृष्ण को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इन लोगों, ऐसे समूह को लेकर के, और वो चल रहे हैं कृष्ण गोचारण के लिए। सखी सखी जल्दी निकलो, आज जो दिन जा रहा है वो फिर कभी नहीं आएगा। गेलो जे दिवस नासी बेयार, एबे कृष्ण की होबे उपाय, एबे कृष्ण की होबे उपाय। आज जो दिन जा रहा है वो कल नहीं आएगा। जो धारा में हम स्नान कर रहे हैं यमुना जी में, वो थोड़े देर के बाद में कहाँ चला जाएगा। जो जौवन मिला है, ये जौवन एक एक मिनट निकल रहा है, फिर लौट करके नहीं आएगा। सखी अभी तुरंत निकलना है घर से, अंजन लगा रही थी, कृष्ण आ गए, अब पासी में बंसी बज रही है। चलो, आंखों का फल यही है, जो कृष्ण गोचारण में जा रहे हो और उस समय में बंसी बजा रहे हो और तिरछी बंकिम नजरों से देख रहे हो, मंद मंद मुस्कान यहां पर खेल रहा हो, भला ऐसे कृष्ण का दर्शन नहीं करेगी तो क्या दर्शन करेगी। चलो चलो, बस जितनी सखियां थी अंजल लगा रही थी, एक आंख में उठ करके खड़ी हो गई, कोई पैर का गहना उठाई, हाथ उठाया, कमर में पहन लिया, जल्दी से चलते चलते, और कमर की करधनी उठा तो लिया किंतु कहां पहनेंगी। वो करधनी पहन लिया गले में। इस तरह से उल्टे पुल्टे श्रृंगार करके चल रही हैं। उस समय एक सखी कहती है, सास बैठी है सुन लेगी, काम जा रही है। प्रभु जी उतावले हो रहे हैं कीर्तन सुनाने के लिए, सब समय कीर्तन आप लोग कराते हैं थक जाएंगे, थोड़ा सा उनको विश्राम दिया करेंगे, उम्र हो गई है ना, दिन भर यदि वो कीर्तन करेंगे तो थक जाएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा बीच में विश्राम दे दिया करें। मैं दिन भर सुनता हूं तो मैं कहता हूं ये प्रभुपाद को कष्ट दे रहे हैं, दिन भर कीर्तन कराते हैं, किसी को दया नहीं आती। तो एक कह रही है सखी, जोर से मत कहो, ये डोकरी खड़ी है अभी यहीं पर सुन लेगी, डोकरी मैंने क्या है, बूढ़ी है, बूढ़ी बूढ़ी डोकरी, यह जर्था सुन लेगी फिर जाने नहीं देगी, और आंखों का फल निकल जाएगा, फिर लौटेगा नहीं, बस यही समय है, बस यदि वो आगे चला गया तो फिर नहीं होगा। कहिए सुन लेगा तो, सुन लेगी तो क्या कर लेगी, अरे उसकी बहू नहीं गई, उसकी बेटी नहीं गई, वो कहां जा रही, यदि वो जा रही उसकी बेटी गई तो हम भी जाएंगी। ठीक है जाएगी, थोड़ा सा विचार तो करो। दूसरी कह रही है, दूसरा कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तुम्हारे पति से नालिश कर देगा और फिर वो तुमको तंग करेगा। अब तंग करेगा ये शरीर से एक ही बार तो फिर दूसरी बार नहीं करेगा, हम तो जाएंगे जैसे भी होगा। इसलिए संकल्प कर लिया जाने का, जो जरूर जाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए। फिर कहते हैं वक्त्रम ब्रजे ससुतयो, किसका मुख देखना है, सुतयो अथा तो नंद बाबा के दो पुत्र कृष्ण और बलदेव। अरे भाई बलदेव को जबरदस्ती के घुसा रहे हो नंद के पुत्र के रूप में, कृष्ण को मान लो जो उनके पुत्र हैं। बलदेव, बलदेव तो कहते हैं जैसे भाई हमारा पालन पोषण ही बाबा ने किया है, मैं दूसरे को कुछ जानता नहीं, इसलिए नंद को भी उनका पिता मान लो। इसलिए जो दोनों जा रहे हैं बंसी बजाते हुए, अनुबेणु जुष्टम, जिनके मुखारविंद पर वेणु है, वो जो दोनों जा रहे हैं। किंतु बलदेव जी तो सिंगा लेते हैं और कृष्ण बंसी, इसलिए विशेष रूप में अपने भाव को छिपाने के लिए गोपियों ने इन दोनों का नाम लिया। असल में उनको लेना चाहिए था कृष्ण का नाम, किंतु जगत के लोग न समझे इसलिए यहां पर अपने भाव को छिपा करके इसको कहते हैं रस शास्त्र में अवहित्था, अपने भावों को छिपा करके कहना। जैसे कैसे भावों को छिपाते हैं, भाई मैं भाई चलेगी यमुना तट में पानी लाना है, किस लिए जाएगी, पानी के लिए, ये ऊपर से बतलाया, किंतु किस लिए जा रही है? किस लिए जा रही है ये नहीं बतलाएगी, ये किस लिए जा रही है? अंडरस्टैंड, वन गोपी इज टेलिंग टू अदर लेट अस गो टू यमुना, शी इज टेलिंग दैट व्हाई वी शुड गो, वी शुड गो फॉर टेकिंग वाटर। अरे घर के पास ही कुएं में पानी है, वहां जाने की क्या जरूरत है, तो ये नहीं बतलाएगी। इसका कहते हैं अवस्था छिपाने को, इसमें रस है छिपा करके कहने में। कैसे रस है एक देखिए, राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे हैं वन में दोपहर का समय, प्यास लगी है दोनों को, तीनों को, और एक गांव के बाहर में एक कुआं है मीठा पानी, उस पर लड़कियां नारियां सभी लोग पानी भर रहे हैं, किशोरियां पानी भर रहे हैं। और ठीक उसी समय में रात लक्ष्मण सीता जी उस कुएं के पास में आए, राम ने कहा जब पानी पिएगी तो हाँ पिएंगी, मुझे भी प्यास लगी है, लक्ष्मण जी ने मुझे भी प्यास लगी है जरा पानी पी ले। लोग जो थे वहां पर कुएं में जो पानी भर रही थी वो तीनों को देख करके अत्यंत आकर्षित हो गए, देखा अरे ये तो देवियां और देव हैं उतर आए हैं पृथ्वी में, बस पानी भरना छोड़ दिया, कुएं में जो लटका रही है रस्सी वो वही कुएं में रह गई और देखती रह देखने लगी। सीता जी को प्यास लगी है, औरतों ने उनको निकट बुलाए, औरतें औरतों को, और जो पुरुष लोग थे वो रामचंद्र जी के पास में खड़े हो गए। सीता जी ने अंजलि में भर करके एक ने पानी पिलाया ऊपर से और उन्होंने ऐसे पानी पिया, रामचंद्र जी ने भी ऐसे ही पानी पिया, पुरुषों ने पानी पिला दिया, लक्ष्मण जी को भी शीतल बरगद की छाया है उसमें वो बैठ गए, सीता जी भी स्त्रियों के पास में बैठ गई। स्त्रियां चुपचाप नहीं बैठ सकती, पुरुष लोग बैठ सकते हैं, स्त्रियां जरूर बात करेंगी। तो उसने सीता जी को सिर पर हाथ रख करके, बेटी कहां से आई, कैसे रहती है? अंत में उन लोगों ने पूछा ये तुम्हारे इसमें पति कौन है? तो सीता जी ने क्या किया, अपने अंचल से घूंघट तो था ही, थोड़ा सा ओट कर लिया ऐसे ने? और ओट करके देवर के लिए कहा, ये हमारे जो गोरे हैं ये मेरे देवर हैं ने? और कुछ नहीं कहा, ये मेरे देवर हैं। अब सब स्त्रियां समझ गई कि नहीं ये इनके बड़े भैया हैं ये नहीं कहा ये मेरे पति हैं, खसम है, ये नहीं कहा, तो रस किरकिरा हो जाता। उसी तरह से यहां वक्त्रम प्रजेश सुतयो अनुदेनु जिष्टम, देवों के लिए कह रहे हैं अपने भाव को छिपाने के लिए, कोई न समझने कि कृष्ण के प्रति इनके आप प्यार अधिक है, साधारण रूप में सबके ऊपर में है इसलिए इनके ऊपर में है, किंतु भीतर का भाव यह है अनुदेनु जिष्टम, जो आगे चल रहा है वो इनका बड़ा भैया बलदेव है, उनके जो पीछे अनु मने होता है पीछे पीछे जो चल रहा है बंसी बजाते हुए बड़े सुंदर रूप से मुस्कान देते हुए और कटाक्षों से दूसरों की तरफ में देखते हुए, किसको तरफ में देख रहा है, सखाओं के तरफ न गैया के तरफ में नहीं, इधर उधर जो छिपी हुई किशोरियां हैं अपनी जो प्रियाएं हैं उनके तरफ में देख रहे हैं और चल रहे हैं इधर ने? ऐसे कृष्ण के मुखारविंद को देखना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी आंखों की सफलता इसी में है, हमारी आंखों की भी सफलता किस में है, श्याम सुंदर के देखो, महाप्रभु जी को देखो, और ये तो शिव विग्रह के रूप में साक्षात हैं ये बात ठीक है, किंतु बोलते नहीं है जरा, हमसे नहीं बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बोलते होंगे किसी से, हम तो ये चाहते हैं कि प्यार से आकर के हमसे भी लग जाए और हमसे बोले, जरा गिरिराज जी जरा मुझे पंखे तो झल दो, मुझे गर्मी लग रही है, किंतु ये नहीं बोलेंगे, भाव से समझ लीजिए, किंतु जब वो आकर के प्रत्यक्ष रूप में जैसे गोपियों के साथ में व्यवहार करते हैं, इसीलिए इस जगत से मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन में जाने की जरूरत है, इस जगत में नहीं होता, इसलिए वैसी चीज की जरूरत है नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जाने की। तो वहां की ये चर्चा हो रही है या भौम वृंदावन की चर्चा हो रही है, तो ये मतलब हुआ आगे आगे बलदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे कौन जा रहा है, कृष्ण, क्यों, कृष्ण को भी लज्जा आती है बलदेव जी के सामने गोपियों की तरफ में देखने में, इसलिए बलदेव जी जानबूझ करके आगे चले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जो मैंने देखने से इन दोनों को लज्जा आएगी, इनके प्रेम के बीच में पड़ना नहीं चाहिए, है ना, वो जेठ है ना और ये कौन है, प्रियतम है, इसलिए बीच में नहीं आना चाहिए, इसे गोपियों का किंतु चित्त भरता नहीं, कितने ही भर रहा, वो ये नहीं चाहती, कुछ और चाहती हैं, उसके लिए एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक और अर्थ कर रहे हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं, ब्रजेश तनयो अनुबेनु जुष्टम, ब्रजेश तनयो, तनयो ये द्वितीय है, सुतयो, सुतयो मैंने दो लड़के पुत्र, या पर सुतयो क्यों हुआ, इसलिए हुआ वृंदावन में ब्रज में दो ब्रजेंद्र हैं, एक हैं नंद बाबा, एक हैं एक शेर जानते हैं ना, और सवा शेर हैं वृषभानु महाराज, समझ रहे, नंद बाबा हैं ब्रजेश, इनको 9 लाख गायें हैं और विश्वभानु महाराज के 11 लाख गायें हैं, नंद बाबा से वैभव अधिक है, नंद बाबा को परम सुंदर पुत्र पैदा हुआ है कृष्ण, अद्भुत सुंदर, और उनसे 1.5 सुंदरी कौन है, विश्वभानु महाराज की लाडली, जिसको देख करके दोनों यदि रहे ना, कृष्ण को राधा जी देखेंगी, राधा जी को कृष्ण, किंतु राधा जी को देख करके कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे, इतना उनका सौंदर्य है राधा जी का, इसलिए ब्रजेंद्र सुतयो, वृषभानु महाराज जी की सुता और नंद नंदन, नंद के पुत्र जो है ये है नंद नंदन कृष्णचंद्र, ये दोनों का इसमें अर्थ लगाएंगे, जैसे वेणु बजा रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कृष्ण चलाकी के साथ में अपने सखाओं से कुछ अलग हो गए, उनको आगे कर दिया, अभी आ रहा हूं, और कुसुम सरोवर में गोपियों के दल में जा मिले, जहां उनकी प्रिया जी हैं और सब सखियां हैं। राधा जी ने उनकी बंसी छीन ली, कृष्ण ताकते रह गए और मुख पर लेकर के बजाना आरंभ किया। कृष्ण ने राधा जी उसमें फूं दे रही है, बजा रही है मुख में लेकर, और कृष्ण शिखला वहां पर स्वर की मूर्छनाएं ये सब निकाल रहे हैं हाथों की अंगुलियों से। अनु बेनु जुस्तम, फिर राधा जी ने जब बेनु बजाई और कृष्ण उसको पीछे पीछे उसमें स्वर लहरियां निकाल रहे हैं, इसका नाम है अनुबेनु जुस्तम। उस समय में कृष्ण राधा जी के तरफ में बंकिम दृष्टि से जो देख रहे हैं, उसको देखना ही हमारे आंखों का एकमात्र सार है, जीवन का सत्ता है। यह विशेष विशेष अधिकारियों के लिए अर्थ है, किंतु यही अर्थ सर्वोत्तम है, सीमा तक है। इसलिए कृष्ण बेनु गाय चराने जा रहे हों, सखाएं हों इधर हट गए हैं, बलदेव जी आगे चले गए हों, और उस समय में राधा जी और कृष्ण दोनों बेंसी बजा रहे हैं, उस समय कृष्ण के तरफ, कृष्ण राधा जी के तरफ में, सखियों के तरफ में सकातर दृष्टि से, प्रेम भरी चितवन से और उनके तरफ में देख रहे हों, उनका यह कटाक्ष मोक्षण जो है, इसका दर्शन करना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। यदि काम हो, इच्छा हो, काम माने इच्छा यहां, तो ऐसे ही कानों की सार्थकता किसमें है, कृष्ण के बेनुनाद, कृष्ण की मधुर स्वर सुनना ही ये कानों का। मन का एकमात्र सार क्या है, कृष्ण की कथाओं का लीला चिंतन करना। कौन सी कथा, प्रहलाद महाराज जी की भी कथा का सुनने से हृदय निर्मल हो जाएगा, राम की कथा सुनने से भी निर्मल हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। सखाओं के साथ में गोचारण सुनकर के और भी चित्त उन्नत होगा। जसोदा माँ जी का वात्सल्य की कथाएं सुन करके, जसोदा माँ जी ने उनके कमर में रस्सी बांध करके ओखल में बांध दिया, यह भी बड़ा मनोहर लीला है। किंतु सबसे मनोहर लीला कौन है, रास इत्यादि जो गोपियों की लीला है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, सद्धानितो अनुसुरिया तथ वर्णये दजह भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग मासु अपि नित्य चरेण तीरा। हृदय का जो रोग है वो दूर हो जाता है। हृदय का रोग क्या है, किसी भी वस्तु को देख करके, विशेष करके पुरुष स्त्रियों की तरफ और स्त्रियां पुरुषों को देख करके जो चित्त अपने हाथ से छोड़ देती हैं, दूसरे के हाथ में चला जाता है, इसको कहते हैं काम। यही हृदय रोग सबसे अधिक है। अर्थ की लालसा भी हृदय रोग है, प्रतिष्ठा की लालसा भी, किसी चीज की भी लालसा भगवान को छोड़ करके और जितनी प्रकार की लालसाएं हैं, ये काम है। किंतु हृदय रोग वही है जिसको ब्रह्मा और शंकर भी अब वशीभूत अपने मन को नहीं रख सके। यह रोग भी दूर हो जाएगा कैसे, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने से। किंतु अधिकारी कौन होगा, इसके लिए बस लाल श्रद्धा हो। क्या श्रद्धा, पहले हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, चित्त को पवित्र कर लेंगे, और तब फिर चित्त निर्मल हो जाने के बाद नहीं इन कथाओं को सुनेंगे। ऐसा कभी भी जन्म जन्मांतर में नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जितने भक्ति हमारे हृदय में आएगी, जितने परिमाण में, उतने परिमाण में हृदय रोग दूर होगा, मन निर्मल होगा, क्रोध इत्यादि सब दुर्गुण जाएंगे। और आप कहेंगे जो पहले हृदय को निर्मल कर लें, कोटि कोटि जन्म जन्मांतर लग जाएगा, कभी भी चित्त निर्मल नहीं होगा। मन को शांत करने का ही उपाय नहीं है। सौभरी ऋषि 10,000 वर्ष पानी में बैठ करके, नंग धड़ंग हो करके विष्णु में अपना चित्त लगा रहे हैं 10,000 वर्ष। हुआ क्या, मछलियों को देख करके चित्त में काम पैदा हो गया, और फिर जल से निकल करके योग तपस्या से 50 रूप धारण करके सौभरी ऋषि मंधाता की 50 लड़कियों के साथ में शादी करके 50,000 वर्ष तक भोग विलास किया, जीवन बिता गया। ये 10,000 और 20,000 वर्ष क्यों चले गए। आप लोगों ने जजाति का उपाख्यान सुना होगा, काम से काम की दूर नहीं किया जा सकता, न काम ना न जात काम कामानाम उपभोग शाम्यति, काम से काम को नहीं हो जाता, दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने ही परिमाण में हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, चित्त को भगवान में लगाएंगे, उतने ही परिमाण में हृदय रोग भी दूर होगा और भक्ति होगी। इसके लिए कौन सा व्यक्ति योग्य है, इसी के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गुरु में, शास्त्र में और भगवान के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या श्रद्धा? इन कथाओं को सुनने से हमारा सब दोष दुर्गुण है, अपराध है, अनर्थ है, दूर हो जाएगा, इसके लिए श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं फिर से समझिए, विश्वास, दृढ़ विश्वास। प्राण जाएगा, कोई काट देगा बोटी बोटी, तभी बदन से मुख से हरिनाम करना नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मुसलमानों को, काजी ने कहा कि हरिनाम मत करो, कृष्ण कृष्ण मत करो, उन्होंने कहा कि खंड खंड यदि होए जाए देह प्राण, तब वो हम बदने ना छाड़ी हरिनाम। तुम क्या कह रहे हो, तुम कोड़े लगाने के लिए कह रहे हो, हमारी बोटी बोटी भी कर दी जाए, खंड खंड हमारा शरीर हो जाएगा, तभी मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकता। इसको कहते हैं विश्वास। इस तरह से गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में यह विश्वास होना चाहिए। क्या? भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान का नाम करने से, भगवत चिंतन करने से, इन लीलाओं के कथाओं के श्रवण करने से हमारा हृदय रोग संपूर्ण दूर हो जाएगा, मैं भगवान का भगवान को प्राप्त करके उनकी सेवा को पा सकूंगा। इस विश्वास को नाम श्रद्धा। यह श्रद्धा जिसको उत्पन्न हो गई वो ये लीला कथाओं को श्रवण करने का अधिकारी है। इस तरह से हम जानते हैं बिल्व मंगल जैसा कौन प्रभावी व्यभिचारी होगा, अजामिल जैसा कौन होगा, किंतु भगवान नाम करने से देखो जैसे इनकी क्या गति हो गई। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज जी आगे ये कहते हैं, यथा ही पुरुषस्य, इसके पहले का श्लोक है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपध्वम अर्थतम। कौमार आचरित, बच्चों को बुला लिया, हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरु ले जाओ इसको अपनी पाठशाला में, अच्छी तरह से शिक्षा दो, और आगे से यदि विष्णु नाम क्या तुम्हारा गला काट दूंगा, सावधान। नारद प्रभृति ये बिगड़े हुए मनुष्य ना आए हमारे बच्चों के पास में, नहीं तो इसकी बुद्धि को बिगाड़ देंगे। नारद या सनत चंदन सनत कुमार कभी भूल करके भी धर्म मत आने देना, इनकी बुद्धि विकृत है। ये लोग कहेंगे माता पिता की सेवा ना करके भगवान की सेवा करो, भगवान ही आराध्य है, माता पिता को कहेंगे मैं ये सब कुछ नहीं कह देंगे, भगवान ही सब कुछ है, किसी दूसरे देवताओं की पूजा ना करो, बस कृष्ण की ही पूजा करो, ये बुद्धि इसलिए इनकी बुद्धि विकृत है, इनको दूर रखो, ये लोग भ्रष्ट हैं धर्म से। हमारे गुरु जी ठीक है धर्म में लगे हुए हैं, क्या वो नहीं जानते? हमारे शुक्राचार्य जी और ये संडामार्क नहीं जानता, खूब जानते हैं, इसलिए वो लोग जानते हैं ये भागवत और शास्त्रों का सार, ये संसार में अर्थ धर्म और काम है, इसलिए वो लोग नहीं करते। भगवान हमारे गुरु नहीं करते, यदि होता तो ये बिगड़ा हुआ लड़का है इसको सुधार लाओ। गुरु जी उनको लेकर के पाठशाला में आए, नम्रता से उनको बैठा, बेटा मैं अभी जा रहा किसी काम से, तुम जरा यहां पर रहो, मैं अभी आ रहा। गुरु जी चले गए, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि बच्चों आज हम लोग खेलेंगे नहीं, दो मिनट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बच्चे बोलिए क्या कहना चाहता है? सबको बैठा दिया और कहा कि पहले हम लोग एक बात करें, पहले हम लोग एक मैं कीर्तन करूंगा, गाना गाऊंगा, तुम लोग हमारे साथ में गाना। बच्चों ने कहा जी अच्छा, तो बच्चों को तो गाना अच्छा लगता है, अजय हम आगे आगे बोलेंगे तुम पीछे पीछे, अजय ठीक है ताली बजाना बस। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
वाह, ये तो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, बस थोड़े से उनमें रुचि पैदा हो गई और होकर के कहना आरंभ किया, कौमार आचरित प्रकट, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सखा, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। नानी जी भगवान कौन, हम लोगों ने तभी आज तक सुना नहीं कि भगवान कौन, भगवान कौन तुम लोग नहीं जानता, मैं बतलाता हूं। भ माने होता है अखिल विश्व का भरण करने वाला, अखिल विश्व का संचालन करने वाला, गमयिता नेता, गौ